हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मिस्टर तेज प्रकाश दत्त से बात करने के लिए आंशी सीक्रेट एजेंसी ऑफिस आई हुई थी। वो उनसे परमिशन मांगने आई थी ताकि वो विधिक के पास जा सके। मिस्टर दत्त ने आंशी को विधिक के पास जाने की हामी भर दी थी और साथ ही उसे 3 दिन तक सिक्योरिटी एजेंसी रहकर इसके लिए ट्रेनिंग करनी थी। आंशी के इस फैसले से कोई खुश नहीं थे, लेकिन मिस्टर दत्त के आगे किसी की वैसे भी नहीं चलनी थी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एजेंसी ऑफिस में एक बड़ा सा पार्सल आया। पहले पार्सल का सिक्योरिटी चेक किया गया कि कहीं उसमें कोई बम या इसी तरह की चीज ना हो। सिक्योरिटी चेक में पास होने के बाद पार्सल को खोला जा रहा था। वो काफी भारी भी था। एजेंसी ऑफिस में काम करने वाले सभी उसके इर्द गिर्द इकट्ठा थे। आंशी ने पार्सल की तरफ देखा और फिर कहा, क्या आज किसी का बर्थडे है जो इतना बड़ा गिफ्ट आया है? जिसके पार्टनर ने ये गिफ्ट भेजा है वो सच में काफी लकी है। अमन आंशी के पास खड़ा था। उसकी बात सुनकर उसने उसे तिरछी निगाहों से देखा और धीरे से कहा, तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? तुमसे तो घर जाकर ही बात करूंगा। पता नहीं कब से क्या तमाशा लगा रखा है, एक बार मुझसे बात तक नहीं की। अमन के लहजे से साफ था कि वो आंशी के विधिक के पास जाने के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। आंशी को अमन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, ओ रियली, मुझे नहीं पता था तुम्हें बात करनी भी आती है। मुझे तो ये पता था कि तुम्हें सिर्फ नोट्स लिखकर छोड़ने आते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे नोट की वजह से परेशान हो? मैंने तो उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा था, सिर्फ एक सॉरी ही था। मुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए कन्फ्यूज था कि कहीं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की। उसके लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? एक बार आकर बात तो करती, सीधा विधिक के पास जाने का डिसीजन ले लिया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं तुम्हें उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा, अमन ने गुस्से में कहा। अमन और आंशी अपनी बातों में बिजी थे तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। वो लावण्या के चिल्लाने की आवाज थी। पार्सल के अंदर दिव्याना की लाश थी और उसके हाथ में एक फोटो थी। लावण्या ने कांपते हाथों से उस फोटो को उठाया। उस फोटो में अमन लावण्या को गोली मार रहा था। वो विधिक के घर के CCTV कैमरा की फुटेज से निकाली गई थी। दिव्याना की लाश और उस फोटो को देखने के बाद लावण्या वहीं पर बैठते हुए जोर जोर से रोने लगी। एक एक करके उसके दिमाग में सारी चीजें घूम रही थी। जब वो लोग विधिक के घर पर गए थे तब लावण्या ने अमन से बहुत बार दिव्याना के बारे में पूछा था, लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी ही देर में लावण्या की आंखें रोते हुए लाल हो गई थी। उसने अमन की तरफ सर्द निगाहों से देखा। दिव्याना की लाश देखने के बाद सबकी नजरें नीचे हो गई थी। वहीं आंशी ने अमन की तरफ देखकर धीरे से कहा, क्या इसीलिए तुम कल रात को ड्रिंक करके आए थे? तुम्हें भी सारे सवाल जवाब अभी पूछने जरूरी हैं क्या? अमन ने चिढ़कर जवाब दिया और फिर वो लावण्या के पास गया। लवी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमन लावण्या को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसने उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगाया। उसके बाद लावण्या ने अमन का कॉलर पकड़ा और रोते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था तुम्हें कि वो बदल रही है। तुम्हारे मिशन के लिए उसने अपनी जान तक खतरे में डाल दी। तुमने उसे आंशी के लिए मारा ना, या इस वजह से कि विधिक को उसकी सच्चाई पता चल गई? दत्त सर तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा। अमन पहले एक आंशी की वजह से गुस्से में था, ऊपर से लावण्या उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। अमन ने लावण्या के हाथ अपने कॉलर से अलग किया और सख्त लहजे में कहा, बिहेव योर सेल्फ लावण्या बजाज, अपनी बहन के मौत के सदमे में तुम अपने सीनियर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। रही बात इसे मारने की, तो इसे मारने के लिए मेरे पास बहुत सारे कारण थे, और उनमें सबसे बड़ा कारण ये था कि ये विधिक राणा जैसे क्रिमिनल का साथ दे रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि इस लड़की की नज़रों में हीरो बन सको। तुमने मेरी बहन को मारा क्योंकि वो तुम दोनों के बीच में आ रही होगी। क्या तुम मुझे भी मार दोगे क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ? यू नो वॉट अमन, तुम भी विधिक राणा की तरह इस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो। लावण्या रोते हुए बोल रही थी, तभी अमन उसकी बात बीच में काट कर जोर से चिल्ला कर बोला, खुद को संभालो और ये बकवास करना बंद करो। मेरे पास सबूत है तुम्हारी बहन के गुनाहगार होने के। जितनी तकलीफ तुम्हें इस वक्त हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे उसे मारते हुए हो रही थी। वो मेरा पहला प्यार। अमन बोलते हुए रुक गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अमन की आंखों में भी आंसू थे। अमन की बात सुनकर आंशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे अमन और दिव्याना की रिलेशन के बारे में पता नहीं था। उसने अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, तो क्या इसीलिए कल रात ये इतनी पीकर आया था? समझ नहीं आ रहा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन के साथ कौन रिलेशनशिप में आता है। इससे पूछने गई तो दो बातें मुझे ही सुनाएगा। ऊपर से लावण्या तो इतने गुस्से में है कि उसने अमन को भी चांटा लगा दिया। अमन यहाँ से गया है, वो ठीक नहीं है, मुझे उससे बात करनी होगी। अमन का ख्याल आते ही आंशी तुरंत वहाँ से हट गई और उसके पीछे जाने लगी। वहीं मिस्टर तेज प्रकाश दत्त लावण्या के पास आए, उनके साथ मिस्टर जिंदल भी थे। मिस्टर जिंदल ने लावण्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अमन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम्हारी बहन ने विधिक से हाथ मिला लिया था। मुझे ठीक से पता तो नहीं, लेकिन शायद कारण अमन ही रहा होगा। दोनों ने एक डील की थी जिसके चलते विधिक को आंशी चाहिए थी और उसे अमन। विधिक बाहर गया था तब वो मुझे दिव्याना के भरोसे ही छोड़कर गया था। मिस्टर दत्त ने मिस्टर जिंदल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और सबूत देने की जरूरत है मिस बजाज। उस दिन सुबह विधिक 4 घंटे तक बाहर था, मिस्टर जिंदल और दिव्याना घर में अकेले थे। दिव्याना चाहे तो हेल्प करके उन्हें वहाँ से निकल सकती थी और खुद भी निकल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो विधिक का साथ दे रही थी। तुम्हें फिर भी यकीन ना हो तो तुम्हें कुछ दिनों पहले विधिक की पार्टी की फुटेज भेज दूंगा। वहाँ लावण्या ने अलग गेटअप ले रखा था और वो विधिक के साथ पार्टी में थी। अगर विधिक उसे बंदी बना कर रखता तो वो उसे पार्टी में लेकर कभी नहीं जाता। हमसे बेहतर तुम अपनी बहन को जानती हो, वो बहुत स्मार्ट थी और किसी इंसान का कैसे फायदा उठाना है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी बातों से लावण्या ये तो समझ गई थी कि गलती दिव्याना की ही थी। उसने मिस्टर दत्त की तरफ देखा और धीरे से कहा, फिर भी उसे मारना ऑप्शन नहीं था। ठीक है, मान लेता हूँ मारना सही ऑप्शन नहीं था। अच्छा बताओ कि उस दिन अमन की जगह तुम वहाँ पर होती तो उसके साथ क्या करती? उसे अरेस्ट करके मौत से बदतर जिंदगी देती या फिर उसके किए की सजा उसे उसी वक्त दे देती? क्या गारंटी है कि विधिक दिव्याना के पीछे और गलतियाँ नहीं करता? ऑलरेडी वो आंशी के चक्कर में सबको बर्बाद करने पर तुला है, फिर दिव्याना को अपनी लाइफ में लाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं करता और कितने लोगों की लाशें बिछा देता। उसे मारना ही सही ऑप्शन था जो अमन ने चुना। उसके लिए भी खुद के इमोशंस को काबू रखना मुश्किल रहा होगा। तुमने उसे इतना कुछ कह दिया, कभी उसके बारे में सोचा है कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया उसकी जान खुद उसने अपने हाथों से ली थी? मिस्टर दत्त ने प्यार से लावण्या को समझाया, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। मॉम डैड पता नहीं दिव्याना के मरने की खबर सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं उन्हें सच भी नहीं बता सकती, लावण्या ने जवाब दिया।
मिस्टर दत्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सहलाते हुए कहा, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, हम खुद से देख लेंगे। उसके बाद मिस्टर दत्त ने इशारे से कुछ आदमियों को दिव्याना की लाश ले जाने के लिए कहा। वो फॉरेंसिक रूम में उसकी डेड बॉडी लेकर जा रहे थे ताकि उसके माँ बाप के सामने एक नॉर्मल एक्सीडेंट दिखा सके। लावण्या दिव्याना के साथ थी, वहीं आंशी तुरंत अमन के पास गई। उसे अमन मीटिंग रूम में मिल गया था जो सिर झुकाकर बैठा था। आंशी ने एक चेयर खिसकाई और अमन के पास बैठ गई। आंशी बैठते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं ही इन सबको रोक सकती हूँ। मैं विधिक की कमजोरी हूँ तो मुझे अच्छे से आना चाहिए कि उसका फायदा कैसे उठाना है। मैं काफी कुछ सीख चुकी हूँ, तुमने मुझे सिखाया है, थोड़ा और सिखा दो ताकि विधिक के पास जा सकूँ। बोलते हुए आंशी ने अमन का हाथ पकड़ लिया। अमन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अमन के कंधे पर अपना सिर रख लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें उसके पास नहीं छोड़ सकता, मैंने उस लड़की को खोया है जिससे मैंने पहली बार प्यार किया। प्यार का मतलब उसके जरिए जाना, अब उसे नहीं खो सकता जिसे आज इतना प्यार करता हूँ। तुम तो हमेशा देश के ऊपर रखते हो, पर आज तुम्हारा प्यार बीच में कहाँ से आ गया? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं अग्रेसिव होकर यहाँ आ गई थी, लेकिन अब मैं अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली, तुम्हें मुझे ट्रेंड करना ही होगा अमन, आंशी में सख्त आवाज में कहा। आज अमन को पहली बार उसकी आवाज में बचपना नहीं बल्कि मैच्योरिटी दिखाई दी। अमन ने सिर उठाकर आंशी के चेहरे की तरफ देखा जिस पर हल्की मुस्कुराहट थी। आंशी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं कर लूंगी अमन, विधिक चाहे मेरे साथ कितना भी टॉर्चर कर ले पर वो मुझे मार नहीं सकता। मैंने भी तो दिव्याना को मारा था, अगर उसने भी तुम्हें, अमन बोलते हुए रुक गया, उसे डर लग रहा था कि कहीं विधिक आंशी को मार ना दे। चिंता मत करो, वो मुझे नहीं नुकसान पहुंचाएगा, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो और फर्क ये है कि तुम चीजें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाने में यकीन करते हो, पर विधिक अलग है, वो किसी इंसान या चीज से अटैच हो जाता है तो उसे भूलने के बजाय उसे अपने पास रखना चाहता है। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है तो कभी मुझे नहीं मारेगा। हाँ, उसे मेरा सच पता चला तो हो सकता है वो मुझे थोड़ा बहुत टॉर्चर करे और कैद करके रख ले, पर मैं उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मुझे तुम पर और तुम्हारी टीम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे पूरी तैयारी के साथ भेजोगे। मैं विधिक की हर एक इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाती रहूंगी। अगर विधिक मुझे सात समंदर पार भी ले गया ना अमन, तो मुझे यकीन है कि तुम वहां भी मुझे लेने आओगे, आंशी ने पूरे विश्वास के साथ कहा और अमन के गले लग गई। अमन को इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि इस बीच आंशी ने एक बार भी दिव्याना के बारे में नहीं जानना चाहा। आज उसे सच में यकीन हो गया था कि आंशी अब बड़ी हो गई है और सिचुएशन से लड़ने के काबिल बन गई है। ठीक है, अमन ने जवाब में इतना ही कहा। उसने आंशी को विधिक के पास जाने की इजाज़त दे दी थी। आंशी भी उससे खुश हो गई थी। फाइव स्टार्स।